टॉक शो विद अर्पा रेडियो। अर्पा रेडियो के आज के टॉक शो में हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा, कैंसर के प्रति जागरूकता। इंटास फाउंडेशन रायपुर की एक ऐसी संस्था है जो अपना घर कैंसर और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए रायपुर अवंती विहार में आरंभ की गई है। बालको कैंसर अस्पताल में दूर दूर से आने वाले मरीजों को रहने, खाने और परिवहन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराती है। हमारे अर्पा रेडियो की टीम अपना घर पहुंची और वहां पर बातचीत की, और यही बातचीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इंतास की मुस्कान शर्मा और अजीत कुमार सिंह प्रतिभागी हैं, साथ ही शहनीला नजीब और गार्गी पांडे इस परिचर्चा में सहभागी हैं। संचालन अपराजिता शर्मा कर रही हैं और इस पूरी परिचर्चा का संयोजन किया है संगीता अग्रवाल ने।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
अर्पा कम्युनिटी रेडियो छत्तीसगढ़ के लिए आज हम ये परिचर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका विषय है कैंसर के प्रति जागरूकता। आपको बता दें, हम रायपुर के इंटास कैंसर के सेंटर में बैठे हुए हैं, जहां कैंसर पेशेंट्स के साथ उनके साथ एक केयर टेकर को भी रखा जाता है और उनका पूरा ट्रीटमेंट की व्यवस्था इंटास करता है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं यहां पर जो यहां के पूरे इंचार्ज हैं, मुस्कान शर्मा से। मुस्कान और साथ में उनके असिस्टेंट हैं अजीत कुमार सिंह जी, और मेरे साथ मुझे इस सेंटर तक लाने वाली हैं संगीता अग्रवाल जी, शहनीला जी और गार्गी जी। तो मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं अपराजिता शर्मा हूँ। तो सबसे पहले हम इस इंटास की जो इंचार्ज हैं मुस्कान से पूछते हैं। मुस्कान, आपको इस इंटास के बारे में कैसे पता चला और कैसे आप यहाँ आके इंचार्ज बनी, आप इस फील्ड में कैसे आई?
मैम, मैं इससे पहले जो टीबी बीमारी है उसके मरीजों के साथ काम करती थी। इंटास में काम करने का मौका मुझे इंटास ने ही खुद सामने से दिया है। मैं टीबी के मरीजों के साथ काम करती थी, उनकी मदद करती थी। मुझे लगा कि अब कैंसर के मरीजों को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं इंटास के साथ जुड़ी। इंटास फाउंडेशन बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा काम करती है, ये मरीजों की बेसिक नीड के ऊपर काम करती है।
अच्छा।
मरीजों को जिस चीज की सच में जरूरत है, क्योंकि कैंसर के मरीजों का इलाज 30 से 45 दिन तक चलता है, वो लोग हॉस्पिटल के बाहर रहना, खाना और सोना करते हैं। उस तकलीफ को इंटास ने देखा और उस तकलीफ को इंटास ने सॉल्व करने के लिए ये ट्रांजिट होम बनाया है, जो कि रायपुर के अवंती विहार कॉलोनी में जीवन विहार के अंदर है, जहाँ पे हम पेशेंट को फ्री में रहना, खाना और गाड़ी की सुविधाएं जैसी सुविधाएं फ्री में देते हैं। उनसे किसी भी चीज का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ये चीज इंटास फाउंडेशन की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि पेशेंट सेंट्रिक वर्क जो कहते हैं वो इंटास फाउंडेशन करती है।
हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हैं गाड़ी की सुविधा देते हैं, मतलब आप पेशेंट को यहाँ पे शेल्टर देते हैं और उनका ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल में चलते हैं तो वहाँ तक लाना ले जाना भी आपकी इंटास की गाड़ी ही करती है। आपका स्टाफ इस चीज को मैनेज करता है पूरे तरीके से, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब मैं अगला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि संगीता जी से आपकी कैसे मुलाकात हुई और संगीता जी के बारे में आपको कैसे पता चला या आपके बारे में संगीता जी को कैसे पता चला?
जी, मैं अपने जो इंटास के कार्य को लेकर गई थी MMI हॉस्पिटल, डॉक्टर यशवंत से मिली। डॉक्टर यशवंत एक बहुत ही सपोर्टिव डॉक्टर है, जिनसे मुझे फिर नंबर मिला वंदना मैडम का। फिर वंदना मैडम आकांक्षा स्कूल में एमएड कोऑर्डिनेटर है, फिर उनसे मुझे नंबर मिला संगीता मैडम का। संगीता मैडम को मैंने इन्वाइट किया, वो हमारे सेंटर आई, उनको हमारा बहुत अच्छा लगा, जो भी अरेंजमेंट्स हम करते हैं, जो भी फैसिलिटी हम देते हैं। और मैम के भी आने से हमारे मरीजों को बहुत खुशी हुई। जो हमारा एक वीकली एक्टिविटी है जिसमें हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं पेशेंट की खुशी के लिए, पेशेंट के मोटिवेशन के लिए, वो फुलफिल करने मैडम आई थी, और मैडम का काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट हमें रहा है और आगे भी हम मैडम के साथ जुड़ के काम करते रहेंगे।
संगीता का नाम ही है संगीत, तो ये म्यूजिक वाली भी हैं, सबको हंसाने वाली भी हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करती हैं। हम खुद इनके साथ जुड़ के अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आज हम संगीता के कारण यहाँ पर पहुँचे हैं। अब मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगी संगीता जी से कि आप पहली बार आए तो आपको इंटास आके कैसा लगा, मतलब कैसे फीलिंग हुई, क्योंकि रायपुर में इस तरह का कॉन्सेप्ट तो हमने कभी देखा नहीं था इतने सालों से हम रायपुर में हैं। तो
सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं कहती कि मैं आई, भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया यहाँ से जोड़ने का। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब इस अच्छे से एज में हूँ कि अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली हूँ, अब समाज ने जो मुझे दिया उसे लौटाना है। तो मैं बालको हॉस्पिटल गई, काफ़ी अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस की, लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी नहीं था। मैंने एक होमवर्क किया और अर्पा रेडियो के संज्ञा जी का मेरा काफ़ी सपोर्टिव हैंड रहा, उनका एक दो वाक्य मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता था। तो फिर उन्होंने मुझे आराधना त्रिपाठी का नंबर बताया, आराधना त्रिपाठी के द्वारा फिर मैं मुस्कान से जुड़ी। यहाँ आई तो मुझे लगता था कि मैं अकेली आ रही हूँ, लेकिन लगा नहीं कदम बढ़ाना है तो अकेले ही आना पड़ेगा। यहाँ पे जब आके मरीजों को देखा तो दिल अंदर तक से रोने लगा था, लेकिन जैसे कि अपराजिता जी ने बताया कि मेरा नाम संगीता और हंसाने का काम था तो रुलाने का काम तो था नहीं, तो मैंने खूब अच्छे से उनको हंसाया। और मेरा बस एक ही वाक्य है कि यदि मेरे साथ में गुरु हैं तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता वो खुद दिखाएगा। तो ये मेरी ज़िंदगी के साथ हमेशा होता रहा है कि एक रास्ता बंद होता था तो उससे ज़्यादा सुंदर रास्ता मेरे लिए खुलता जाता था।
ये तो बिल्कुल सच है कि जो बोलते हैं ना पुराने समय में, या जो बोलते हैं कि यदि आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो आपके लिए सैकड़ों दरवाजे ईश्वर पहले खोलता है, तब वो दरवाज़ा बंद होता है कि अब उस दरवाजे से आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस तरफ के फील्ड में आ जाइए। ऐसा कुछ मुझे लगता है शामिला जी के क्या भी एक्सपीरियंस है? शामिला जी आप क्या सोच रही हैं? बहुत सोच में डूबी हुई हैं।
नहीं नहीं मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप कुछ कोई चीज़ दिल से करना चाहते हैं तो जो ऊपर वाला है ज़रूर आपको रास्ता दिखाता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं जो संगीता जी से मिली वो भी एक अचानक ही मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों का बिल्कुल थिंकिंग एक ही निकला, हम दोनों ही कुछ करना चाहते थे, कुछ सही तरीके से करना चाहते थे। यहाँ हमने देखा कि बहुत NGOs हैं, बहुत सोशल वर्कर हैं यहाँ पर, लेकिन उनका कुछ जो है, और जब हम यहाँ आए इंटास में आए तो यहाँ पे जो हमने देखा बहुत फ़र्क देखा दोनों चीज़ों में। यहाँ जो दिल से जो सेवा की जा रही है उसको देख के हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और हम लोग आगे भी सोचते हैं कि यहाँ जितना भी हो सके अपना जो है मुझे से कर देंगे।
NGOs बहुत हैं, काम बहुत हो रहा है, लेकिन अप्रोच सही नहीं है। हाँ। जो होनी चाहिए कि पेशेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है या लोगों को कैसे इस चीज़ को वो करना है। अब मैं यहाँ के जो असिस्टेंट हैं मुस्कान के, अजीत कुमार सिंह जी से पूछना चाहूंगी कि अजीत कुमार सिंह जी, आपने अभी परिचर्चा रिकॉर्डिंग की शुरू के पहले बताया था कि आप हैं बेसिकली बिहार के पले बड़े बिलासपुर में और फिर रायपुर में भी कुछ पढ़ेगी, फिर इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, इंटास के बारे में आपको कैसे पता चला इस जॉब के बारे में कि आप यहाँ आकर पूरा मुस्कान जी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना अच्छा काम करने का आपको मन में कैसे ये विचार आया, किसने प्रेरित किया आपको?
जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी यहाँ मौका देने के लिए, मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले मैं बेसिकली मैं बिहार से ही रहने वाला हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुई कॉलेज से भी मैं बिहार से ही हुआ था। उसके बाद मेरे बड़े भैया हमसे जो बड़े हैं वो बिलासपुर में जॉब करते हैं, इंजीनियर है, रेलवे में काम जॉब करते हैं। तो धीरे धीरे मैं वहाँ पर जब मुझे बुलाया वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बिलासपुर में और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए।
अच्छा।
तो मैंने यहाँ पर बिलासपुर में आया लेकिन मेरे मन नहीं लगा, फिर मैं यहाँ से मैं चला गया अपने होम स्टेट पे। फिर वहाँ पर पटना जो मैं एक हब है मैं एजुकेशन की,
हाँ,
पटना में बिहार में, तो मैं वहाँ पर जाकर तैयारी करने लगा, कुछ तैयारी किया। फिर कुछ मुझे लगा कि कुछ मुझे हायर एजुकेशन लेनी है तो मैंने BEd किया बिहार में, ये बिलासपुर में आकर के घासीदास यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ से भी किया था मैंने बिहार से हिस्ट्री में और साइकोलॉजी में। फिर यहाँ पर मैंने MSW अभी मेरा पंडित सुंदरलाल शर्मा से भी बिलासपुर से मैं यहाँ से MSW में रख लिया।
जी जी।
उसके बाद मैं जब मैं लगा कि मुझे जनरल कंपटीशन अपनी जगह है, अगर हो जाएगी तो गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा साइड में, अगर ईश्वर ने मुझे इस धरती पर अगर जन्म दिया है तो सिर्फ अपने ही सोचना नहीं है औरों को भी सोचना चाहिए। और इस तरह से मैं सोशल वर्क में मेरा रुझान धीरे धीरे आने लगा और मैं सोशल वर्क से मैं जुड़ा।
और सबसे पहले मैंने एक छोटी सी एक एनजीओ में लोकल एनजीओ बिहार का मैंने ज्वाइन किया था अभिनंदन, और उसके बाद से सर्वोदय विकास संस्थान में ज्वाइन किया था एज ए वॉलेंटियर के रूप में मैं ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर मैं कुछ साल वर्क किया, वहाँ पे टीवी प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसके बाद से मेरी वर्क अच्छी तरह से होने लगी और मुझे कुछ अनुभव भी होने लगा और मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा लोगों की सेवा करने में। टीवी के मरीज को जब मैं देखता था तो लगता था कि ये इनकी अगर अच्छी तरह से देखभाल अगर हो जाए, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल जाए, सरकार जो प्रोवाइड कर रही है उनकी ट्रीटमेंट की जितनी भी सुविधाएं अगर हम लोग माध्यम के हैं और हम लोग के थ्रू अगर उनको मिल जाती है तो शायद उनकी जो जिंदगी है बच सकती है। और उनके चूँकि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है तो वह संचारी रोग उसे कहते हैं, तो वो किसी दूसरे में संचार ना हो पाए इसलिए हम लोग उसके लिए भी हम लोग जागरूकता
की बहुत
करते थे। फिर वहाँ से मैं एक सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च ये नेशनल एनजीओ था, मैंने ज्वाइन किया था एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिहार में। फिर वहाँ से उसमें काम किया, उसमें RMNCH है और जो और कोविड प्रोजेक्ट में जब काम किया, चूँकि कोविड बहुत पैनिक है एक है आया था और उस समय उसमें मैंने एक कोविड वॉरियर के रूप में मैंने काम किया था बिहार में। फिर यहाँ पे जो मेरा वो प्रोजेक्ट एंड हो गया तो फिर HLFPPT जो बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट आई थी अभी भी चल रही है, तो वहाँ पे मैं टीवी पे ही काम किया था। लेकिन मुझे लगा कि अब कुछ इससे हट के कुछ डिफरेंस मुझे काम करनी है, तो मैंने इंटास का मैंने एडवर्टीजमेंट देखा और मुझे लगा कि कैंसर पे चल रही है प्रोजेक्ट, तो मुझे कैंसर के मरीजों के लिए भी मुझे क्योंकि मैं शुरू में सुन जानता था कि कैंसर के क्योंकि टीवी पहले लाइलाज थी लेकिन धीरे धीरे रिसर्च होकर अब वो इलाज होकर ठीक हो जा रहे हैं, अब वो उस तरह की वैसे पैनिक डिजीज नहीं है। लेकिन अभी के समय में कैंसर भी लाइलाज थी लेकिन अभी भी उसका भी इलाज आ गया है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है जो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं उनकी बचना मुश्किल हो जाती है। तो शायद हम लोग अगर इस तरह से करें कि लास्ट स्टेज तक पेशेंट पहुँचे ही ना तो इसलिए हम लोग उस तरह के NGO में मेजर रुझान इंटरेस्ट था कि उस तरह से डिफेंस काम करूँ मैं, तो मैं इंटास में अप्लाई किया और इंटास ने मुझे सिलेक्ट किया। और
बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों को ईश्वर का ही एक माध्यम माने, आप दोनों को, आपको और मुस्कान को, कि ईश्वर ने आप दोनों को यहाँ चुनकर भेजा है। और मुस्कान एक प्रश्न मैं तुमसे और करना चाहूंगी कि अभी तुम जितने दिनों से इस चीज को डील कर रहे हो कैंसर पेशेंट्स को, तो तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स में किस तरह के कैंसर है जो बिल्कुल ही लाइलाज है और किस तरह में सर्वाइव होते हैं, और उनके ऐसा कौन सी चीज है जिसके बारे में हम जैसे बाहर से आए हैं तो हम ये संदेश लेके जाएं बाहर के लोगों को अवेयर करने के लिए, हमको कोई ऐसा कुछ चीज के टिप्स दो कि मैम इसके बारे में आप अवेयर करिए क्योंकि हमारे आसपास की सोसाइटी है और जो लोग बीमार
हैं
उनके लिए हम क्या संदेश लेके जाएं कि किस चीज से बचें ताकि कैंसर तक आपकी स्टेज ही ना आए।
मैम पहली बात तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, आज हम नॉर्मल है 4 साल बाद जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे फैमिली ट्री में, हमारे एंसेस्टर्स में अगर कैंसर था तब भी हमारे साथ कैंसर हो सकता है, तो ये एक लाइफ का कंडीशन है, एक बीमारी है जो होके ठीक भी हो जाती है। ठीक, हम अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि थर्ड स्टेज के भी कैंसर काफी इजिली, मतलब डॉक्टर्स इतने, हमारे अभी ऑन्कोलॉजिस्ट रायपुर में भी अभी इतने अच्छे अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट आ गए हैं कि लास्ट स्टेज के भी कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बस बात यह है कि जो गांव वाले मरीज है हमको उनको झाड़ फूक में नहीं जाने देना,
बहुत सही है,
हमको उनको बताना है कि
बचाना है उनको,
ये इलाज है, आप ये इलाज कराओ, ठीक हो और आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, ये पहला संदेश देना है। दूसरा संदेश ये देना है कि हिम्मत नहीं हारनी, अगर कैंसर के मरीजों को दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, इसीलिए इंटास फाउंडेशन में भी हमारे पास दो दो काउंसलर रहते हैं जो कंटिन्यूसली बातचीत करते रहे पेशेंट से, मरीजों से, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वो अपने ट्रीटमेंट से हार तो नहीं मान रहे, ये उनको मोटिवेशन देना, ये उनको फील करवाना कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, आप ठीक होगे। अब ये है कि उनको कोई अगर बोल देता है कि आपको तो अभी कैंसर है 5 साल बाद फिर से हो जाएगा, वो लोग मान लेते हैं, हो सकता है और होगा में बहुत फर्क होता
बहुत
है। ये फर्क हम लोग को उनको समझाना है कि आपको जो डॉक्टर आपको आपका इलाज कर रहा है उससे ज्यादा आपकी कंडीशन कोई नहीं जानता, तो अपने डॉक्टर के अलावा किसी की बात ना सुने, सिर्फ पॉजिटिव बातें सुने, उसको अपने अंदर ले, नेगेटिव बात अंदर लेने की जरूरत है। और जो आप बीमारी के पहले करते थे, गुटखा, दारू, बीड़ी, ये सब तो हमें जिंदगी भर हाथ मिला। और ऐसे लोगों की इंटास फाउंडेशन मदद भी नहीं करती। हमारे इस पूरे जो हमारा इंटास फाउंडेशन की बिल्डिंग है, इसमें बिल्कुल भी गुटखा, बीड़ी, दारू अलाउड नहीं है। जो मरीज ये सब करते हैं, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो ये है कुछ चीजें जो हम लोगों को बताने की। और ऐसा कोई सेंटर है रायपुर में, लोगों को ये भी पता लगने की जरूरत है, ताकि जितने ज्यादा मरीजों की मदद हो पाए।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप मुस्कान, इस चीज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों को अंधविश्वास से बचाएं। और दूसरी जो स्टेज आपने बोली है, जो केमियो के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में आदमी हिम्मत हार जाता है, उनको उस समय एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आप लोग दे रहे हैं। और हम जैसे बाहर से जो आते हैं काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो उन लोगों को जैसे हमारी संगीता जी देती हैं, सबको हंसाना है, म्यूज़िक का वो करना है, शानिला जी मोटिवेट करती हैं कि नहीं आपको इस तरीके से इन चीज़ों से बचना है और इस रास्ते पे ही ना जाएं कि आपकी स्थिति वहां तक पहुंचे।
करेक्ट,
उस कैंसर की स्टेज यदि आपकी फर्स्ट है तो वो फर्स्ट से आप वापस आ जाइए,
बीमारी
फोर्थ से भी आप आ सकते हैं।
बीमारी जितनी छोटी रहेगी तो हमारी तकलीफें बहुत कम रहेगी। जैसे जैसे हम सोचेंगे कि और एडवांस हो जाए तो भाई उतना दर्द हमको सहना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से ही अवेयर रहें।
सबसे बड़ी बात है ना कि जो रूरल एरियाज के जो पेशेंट हैं, मैक्सिमम अभी के सर्वे के अनुसार देखा जा रहा है कि वो अपनी इलाज जितनी इलाज में जितनी उनकी दिक्कत नहीं होती उससे ज़्यादा होती रहने में, वहाँ पर जाकर सर्वाइव करने में, टाउन में जाकर के रह करके ट्रीटमेंट कराने में दिक्कत होती है। अब तो खैर सभी जगह लगभग हर स्टेट में, कुछ गिने चुने स्टेट में ये सब सुविधाएँ आ गई है, फिर भी लेकिन पहले तो मुझे, मैं जहाँ सुनता था जहाँ से, तो मुंबई में जाकर इलाज कराते,
मुंबई
तो वहाँ पर मैं ये भी सुनता था कि जब वहाँ पर जाकर इलाज कराने में जितनी खर्चे नहीं होती थी, जो गरीब परिवार के मध्यम परिवार के हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर रहने में उनकी खर्च हो जाती थी।
बिल्कुल,
और जो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसके चलते वो पेशेंट फिर मतलब इलाज ठीक से नहीं हो पाते। तो इस तरह से अब धीरे धीरे सुविधाएं आ रही है हर स्टेट में, फिर भी यहाँ भी अगर 200-300 किलोमीटर अगर किसी राज्य की राजधानी में, अगर अच्छे मान लीजिए रायपुर में ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं अभी के समय में उपलब्ध हो गई है, फिर भी बस्तर जैसे या मतलब दुरुस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो पेशेंट आते हैं, यहाँ पर रहने में उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती। एक इंटास फाउंडेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस, यहाँ से रायपुर में नहीं, इंडिया के लगभग सभी कैपिटल्स में, स्टेट के कैपिटल्स में, और कैपिटल्स के अलावा कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कैंसर की, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और सभी तरह का जो मॉडल है, जो अपना घर नाम से है यहाँ पर ट्रांजिस्ट हो, वो सभी तरह एक ही जैसा है।
ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड पूरे भारत में एक जैसे ही रखा
है। अब हमारे जो सेंटर है मैम, अभी है हमारे पास, इस साल के आखिरी तक 50 सेंटर, मतलब पूरा भारत हम कवर कर लेंगे ऐसे सेंटर के साथ।
अच्छा, अब हमारी एक बहुत शांत सी सखी आगे बैठी हैं चुपचाप, गार्गी जी, इनका परिचय दे दूं। ये गार्गी पांडे हैं और ये डिसेबल चाइल्ड के साथ कार्य करती हैं और बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं, बच्चों की मानसिकता समझती हैं और ये हमारे साथ जुड़ी हैं। तो इनके साथ जुड़ के हमें भी ये बहुत अच्छा लगा कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनकी जो मनोभावों को इन्होंने समझा है। तो अब हम गार्गी जी का एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनको इंटास आके कैसा लगा और क्या आपने महसूस किया कि यहाँ के लोगों की मानसिकता वो बदलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ के से इनको मोटिवेट किया जाए।
मुझे तो मैं तो पहली बार जब यहाँ आ जा रही हूँ इंटेक फाउंडेशन के, जो अपना घर ये है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ें मेरे को, मैंने बहुत पहली बार मतलब मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ पर पहला ये ट्रांजिस्ट जो हॉस्टल बोल सकते हैं या घर बोल सकते हैं, सेल्टर जो भी हम बोलें इसको, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ है यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट जो होते हैं एक्चुअली वो फिजिकली तो है ही है दिक्कत में, परेशानी में, बट उनके साथ मेंटली पीस उनका नहीं है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत प्यार से या वो जैसा समझते हैं उनकी भाषा में या उनकी शैली में, उनको हम जब समझाते हैं किसी चीज़ों को तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने भविष्य के लिए उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर ऐसा कहीं उनके मन में लगा हुआ है कि हमको कैंसर हो गया तो हमारी जो बीमारी लाइलाज है या हम यहीं पर रुक जाएंगे, उनको उनको समझाना पड़ेगा कि आपका जीवन शुरू हुआ है अभी। और आज जैसे हमें पेशेंट से मिली तो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, सोच उनकी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ सेल्टर होम की कहूँगी मैं कि यहाँ का जो एरिया है, मतलब ये जो वातावरण उन्होंने चुना है इस घर के लिए, वो बहुत बिल्कुल अपने घर जैसा है। जब हम घर में अपने पेशेंट को या अपने घर के किसी रिश्तेदार को जो माहौल देना चाहते हैं, बिल्कुल वो माल यहाँ पे है। और मुस्कान ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कम उम्र की बिटिया है जो इतना बड़ा टारगेट लेके चल रही है। और यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगी कि काम के साथ साथ एक सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं वो, और ऐसा जुनून लेके जो आगे बढ़, मतलब जो चलना शुरू करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, तो वो उसकी लाइफ कहीं पे रुकती नहीं। और वो बोलते हैं ना, गॉड की ब्लेसिंग्स है वो तुम सबको मिलने वाली है। और हम, मेरे को थैंक यू बोलूँगी स्पेशली आपको, आप लोगों से जिनके कारण मैं जुड़ के यहाँ तक पहुँची, तो स्पेशली थैंक यू आप सबको।
मतलब इस परिचर्चा का अंत हम ये चार शब्दों में करती हूँ मैं, कि इंटास का अपना घर और घर के अंदर मुस्कान की मुस्कान, अजीत जी का सहयोग और आप सबके साथ जो मिलकर हम आए हैं, तो ये परिचर्चा सुनने वाले या वीडियो देखने वालों से मैं ये गुजारिश करूँगी कि जब भी समय मिले, जब भी आप जहाँ से भी सुन रहे हो छत्तीसगढ़ में, आप यदि रायपुर किसी भी कार्य से आते हैं तो 10 मिनट का टाइम निकाल के आके एक बार अपना घर जरूर विजिट करें। और आप उस चीज़ को, उस दर्द को और उस अवेयरनेस की क्या आवश्यकता है उसको आप लोग महसूस करें, तब आप जानेंगे कि हम अपने को, जो भी हमको समाज ने या हमारे को आज जो भी ईश्वर ने दिया है, उस चीज़ का यदि हमें अपने समाज को रिटर्न करना है तो हमें सही अप्रोच क्या है और सही तरीके से हमारी कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से सही लोगों तक मिले, वाकई जिनको ज़रूरत है।
बहुत अच्छा अपराजिता जी, आपका जो सहयोग और आपका इतना सुंदर वाक्य पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायी वाक्य है। ज़रूर हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, और बस हम तो छोटा सा रास्ता चुनते हैं और पूरी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं से प्रकाशित होती है और हम उस रास्ते पे चलते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और यही हम अपनी इस परिचर्चा को विराम देते हैं।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।